ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरकों पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रूपये प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का फैसला किया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षो में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दिलजीत दोसांझ वास्तव में बहुआयामी प्रतिभा और परंपरा के मिश्रण हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे संगीत, संस्कृति और कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गायक दिलजीत दोसांझ ने कहा कि ये 2025 की शानदार शुरुआत थी और प्रधानमंत्री के साथ बहुत यादगार मुलाकात थी। दिलजीत ने कहा कि हमने संगीत सहित कई चीजों पर बात की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद, मंत्रालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी बयां करती है। भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में बंद कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वो 183 भारतीय मछुआरों और कैदियों में से सजा पूरी कर चुके मछुआरों और कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाए। भारत और पाकिस्तान ने कल राजनयिक स्तर पर एक दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को स्थानांतरित कर दिया गया। इससे अत्यधिक जहरीले कचरे को 12 सील बंद कंटेनर ट्रकों में भरने के लिए 100 लोगों के एक समूह ने रविवार से 30 मिनट की शिफ्ट में काम किया। ये कचरा धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में नष्ट किया जाएगा। 1984 में 2-3 दिसंबर की मध्यरात्रि में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें कम से कम 5,479 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हुए। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के टिकटों की बिक्री आज से शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मूल फोटो पहचान पत्र दिखाने पर सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खोले गए काउंटरों से टिकट खरीदे जा सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल ऐप से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकट की कीमतें 20 से 100 रुपए के बीच हैं, जबकि बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के लिए टिकट 20 रुपए में उपलब्ध होंगे। शतरंज रैंकिंग में भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने अपना चौथा और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने पांचवां स्थान बरकरार रखा है। एरिगेसी महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद 2800 की ईएलओ रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय और कुल 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। वे 2801 रेटिंग अंक से चौथे स्थान पर हैं। नॉर्वेजियन मैग्नस कार्लसन 2831 रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। आनंद तीसरे भारतीय हैं जो 2750 की ईएलओ रेटिंग के साथ 10वें स्थान पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।